7 मई दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फतल। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ मामले की सुनवाई राज्य के बाहर करने का दिया आदेश। क्या कहना है पीड़िता के पिता का?
हम सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रखते हैं, कोई हमें ठीक रहेगा। मैं बाहर जाते हैं, बाहर केस हमारा जाए तो अच्छी तरह करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करने होंगे सरकारी बंगले।
अन्य संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं बड़े, जैसे गवर्नर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं, उनको भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है। स्पीकर हैं, इस तरह के जो पदाधिकारी संवैधानिक हैं उनको भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ कथित गैंगरेप और हत्या मामले को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में बंद कमरे में नियमित रूप से बिना किसी देरी के होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई जम्मू कश्मीर में लागू रणबीर पैनल कोर्ट के तहत की जाएगी। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा है कि अगर सीरिया ने अपनी ज़मीन से ईरानी बलों को इसराइल को धमकी देने की इजाज़त दी तो उनका देश बशर अल असद को ख़त्म कर सकता है। युवाल स्टिनिट्स ने कहा कि अगर ईरान ने सीरिया की ज़मीन से हमला किया तो ये असद और उनकी सरकार का अंत होगा। सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में ईरान असद की सेनाओं की मदद कर रहा है, इसके लिए उसने अपने सैनिक और मिलिशिया के सदस्य भेजे हैं। इसराइल को चिंता है कि उसकी उत्तरी सीमा के पास पहुंची ईरानी सेना उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसराइल के मंत्री ने कहा, असद ने हमारे और अपने लोगों के खिलाफ बहुत सारे अपराध किए हैं, मगर हमने आज तक उसके गृहयुद्ध में दखल नहीं दिया। असद अगर ईरान को हमारे ऊपर हमला करने के लिए सीरिया को बेस की तरह इस्तेमाल करने देंगे तो उन्हें बता दें कि ये उनका और उनके राज का अंत होगा। फिर वो ना तो सीरिया के शासक रहेंगे ना ही राष्ट्रपति। ये थे इसराइल के मंत्री युवाल स्टिनिट्स के शब्द। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जांवेस लीड्राइन ने कहा है कि अमरीका कुछ भी करे लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देश इस सौदे को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का यही सबसे बेहतर तरीका है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी संकेत दिए हैं कि अगर अमरीका के अलावा अन्य पक्ष इस समझौते से जुड़े रहते हैं तो ईरान भी इससे पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को खत्म करके फिर से नया समझौता तैयार किया जाए, मगर ईरान और समझौते में शामिल यूरोपीय देश इसके लिए तैयार नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सरकारी मीडिया में इस समारोह का सीधा प्रसारण हुआ जिसमें पुतिन ने कहा कि वो अपने 6 साल के कार्यकाल में आम रूसी नागरिकों के जीवन को बेहतर करने और देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। पुतिन के समर्थक मानते हैं कि उन्होंने रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उन्होंने जार की तरह सत्ता पर अधिकार कर लिया है। पद संभालने के बाद पुतिन ने कहा, अपने शहरों और गांवों को फिर से नया रूप देने और सभी इलाकों के विकास के सपने को हम मिलकर पूरा करेंगे। हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जो हर इंसान, हर रूसी परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA प्रमुख के लिए अपनी उम्मीदवार जीना हास्पेल का बचाव किया है। दरअसल जीना हास्पेल की पूछताछ के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को लेकर आलोचना होती रही है। ट्रंप ने जीना को इस काम के लिए सबसे सही दावेदार बताया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जीना आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए आलोचकों के निशाने पर हैं। CIA की डिप्टी चीफ रहते हुए जीना ने थाईलैंड में चुपके से एक जेल चलाई थी जहां इंटरोगेशन के लिए विवादित तरीके अपनाए जाते थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की पुलिस ने एक रक्तदान शिविर पर आत्मघाती बम हमला करने की तैयारी कर रहे शख्स को मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही ये शख्स शिविर के पास पहुंचा, अधिकारियों ने गोली चला दी। इससे उसकी विस्फोटकों वाली बेल्ट में धमाका हो गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किए जाने और उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मामले की जांच को सीबीआई से करवाने से इनकार भी किया है। मामले की सुनवाई को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर और फियर एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते और फेयर ट्रायल का मतलब स्पीडी ट्रायल भी है, इसलिए ट्रायल डे टू डे यानी रोजाना होगा जिसमें सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। इस फैसले को कश्मीर में किस तरह से देखा जा रहा है बता रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
पीड़िता के परिवार वालों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कठुआ मामले पर सुनाए गए फैसले पर इत्मीनान जाहिर करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो बहुत खुश हैं कि केस को कठुआ से बाहर ट्रांसफर किया गया है। पीड़िता के पिता ने बीबीसी के साथ बातचीत में बताया कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। उनका ये भी कहना था कि पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज तक जो जांच की हम उससे मुतमईन हैं। पीड़िता के पिता,
हम भरोसा रखते हैं बाहर केस हमारा जाए तो अच्छी तरह करेगा। सर जो लोगों ने उसका बच्ची का रेप और मर्डर किया था उन लोगों का वो उस कोर्ट में दबाव था, वो केस को चलने नहीं देते थे, तो हम ये चाहते थे कि हमारा केस बाहर जाए और अच्छी तरह केस की इन्वेस्टिगेशन चले और बच्ची को इंसाफ मिल जाए।
पीड़ित परिवार के वकील दीपिका राजवाट ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत खुश हैं।
पेरेंट्स शुड बी वेरी मच हैप्पी बिकॉज द ट्रायल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू पठानकोट। वी होप कि जो ट्रायल है बेसिकली सर ट्रायल का पीसफुल होना बहुत जरूरी है।
अभियुक्तों के वकील का कहना था कि हम केस के ट्रांसफर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हमारी बुनियादी मांग मामले की सीबीआई जांच है और हम अगले 10 दिनों में सीबीआई जांच की मांग के लिए नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। अभियुक्तों के वकील अंकुर शर्मा,
आप एक फ्रेश पिटीशन फाइल करी तो फ्रेश पिटीशन फाइल करके हम सीबीआई की जांच मांगेंगे, तो ट्रांसफर हुआ है ट्रायल इस पे हमारी कोई प्रतिक्रिया बनती इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय हमारा मेन फोकस सीबीआई है और जिसके लिए पिटीशन अपने 10 दिन में फाइल कर देंगे।
हिंदू एकता मंच के सेक्रेटरी कांत कुमार का कहना था कि हमें केस ट्रांसफर से कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हम मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कांत कुमार,
लेकिन कोर्ट ने ये किया है कि जो नियर बाय स्टेट है पठानकोट वो सबको पास की है, वहां पे शिफ्ट किया है तो वो हम वेलकम करते हैं और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया है उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो।
गौरतलब है कि हिंदू एकता मंच ने 16 फरवरी को कठुआ में अभियुक्तों के समर्थन में एक रैली निकाली थी। राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा है, कठुआ केस के मामले में मैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूँ। इस फैसले से जम्मू कश्मीर पुलिस के हौसले बुलंद होंगे जिन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले। उधर बीजेपी ने कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं और दूसरों को भी करना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल,
जो उनका डिसीजन है ठीक है, वी वेलकम द डिसीजन ऑफ कोर्ट, हमेशा हमने कोर्ट के डिसीजन वेलकम किए।
गौरतलब है कि 10 जनवरी 2018 को जम्मू के कठुआ इलाके के रसाना में मुस्लिम बकरवाल समुदाय से 8 साल की मासूम बच्ची का पहले अपहरण हुआ था और 7 दिनों के बाद बच्ची की लाश इलाके में घनी झाड़ियों में मिली थी। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने अपने आरोप पत्र में बताया है कि बच्ची के अपहरण के बाद बच्ची को नशीली दवाइयां पिलाई गई थीं और जिसके बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बच्ची को कई दिनों तक इलाके के एक मंदिर में बंधक बना के रखा गया था। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि वो उनकी सरकार को 10% सरकार कहने के लिए माफी मांगे। अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते तो उनसे 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई है। अब चूंकि चुनाव प्रचार थमने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चुनाव प्रचार में उतारा है। बंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई इस तरह का कानूनी नोटिस भेजें, लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यही किया है। उन्होंने उन आरोपों के बारे में नोटिस भेजी है जिसमें प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में पिछले महीने और पिछले हफ्ते में की हैं। प्रधानमंत्री ने सिद्धरामैया को 10% सरकार और सीधा रुपया सरकार बुलाया था। सिद्धरामैया के सहयोगी और वकील वी एस उग्रप्पा ने बीबीसी को बताया,
ಈಗ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್
ಹಮ್ನೆ ಯೇ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಔರ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೋ ಭಿ ಭೇಜಿ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಬಯಾನ್ ಅಪವಾದಕ್ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಭೇಜೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ ಆಪರಾಧಿಕ ಶಿಕಾಯತ್ ಔರ್ ಸಿವಿಲ್ ಶಿಕಾಯತ್ ಭಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಡಾಲೆಂಗೆ 100 ಕರೋಡ್ ರುಪಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೇ ಥೆ ವಿ ಎಸ್ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಶಬ್ದ दूसरी तरफ मोदी ने अपने मोबाइल ऐप से युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पक्ष टेक्नोलॉजी के उपयोग का विरोध कर रही है।
देश में वो दल है जो टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ गए हैं, या तो उनकी नासमझी है या जानबूझकर के झूठ फैला रहे हैं। हर टेक्नोलॉजिकल विषय का विरोध करना है, यानी ईवीएम तक का विरोध करना, आधार का विरोध करना, मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी का विरोध करना हर जगह पे। दूसरी तरफ हम लोग हैं जो आधुनिक भारत बनाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को महत्व देना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, भारत पीछे नहीं रह सकता है।
आज कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी चुनावी अभियान में उतारा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के तरीकी के बारे में हर बात पर ये इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। डॉक्टर सिंह ने मोदी के इल्जामों को खारिज करते हुए कहा, सिद्धरामैया सरकार ने बेंगलुरु को स्टार्टअप्स की राजधानी कर दिया है। सिर्फ वही नहीं बल्कि कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने बहुत सारे नौकरियां भी युवकों को दिलवाई है, वहीं जहां केंद्र सरकार विफल हुई है। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द। बहरहाल आगे थोड़े दिनों में ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कानूनी नोटिस पर क्या कहेंगे और इस तरह के कितने इल्जाम होते रहेंगे। चुनावी प्रचार के लिए अभी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
राजस्थान में आंधी तूफान की फिर चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछले तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई थी। तूफान की आशंका को लेकर लोग भयभीत भी हैं। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
पिछले आंधी तूफान के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि एक बार फिर तूफान की आशंका पैदा हो गई है। उस तूफान ने राज्य में 35 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और 200 लोग अब भी जख्मी हालत में हैं। इस हादसे के बाद लोग बिखरी जिंदगी समेटने में लगे हुए हैं, लेकिन अब फिर मेघ गर्जना और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बीबीसी को बताया कि किसी भी अनहोनी से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले तूफान ने पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिलों में भारी नुकसान किया था, लिहाजा इन जिलों में लोग ज्यादा डरे हुए हैं। भरतपुर जिले में सुनारी के सरपंच सुरेश पाल सिंह कहते हैं,
लोगों में इतना भय व्याप्त है जो पिछले 2 तारीख को तूफान आया था उसको देखते हुए कि इस बार आ गया पता नहीं क्या हो जाएगा। उखड़ गए, लट्ठे टूट गए, हजारों की संख्या में लोगों के ऊपर जो बने हुए थे टीन उड़ गए, पशुओं के लिए जो छाया कर रखी थी वो टीन उड़ गई, दीवार गिर गई। अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहे साहब, अब पता नहीं क्या होगा। सरकार की तरफ से सुझाव आ रहे हैं कि सुरक्षित जगह पर रहिए, अच्छे पक्के मकान में रहिए, पुराने कच्चे मकान में मत रहिए, छप्पर में मत रहिए, 3 साइड में मत रहिए, इस तरीके की अपनी दे रही है सरकार, तो भय बना हुआ है।
आपदा प्रबंधन के सचिव हेमंत गेरा ने बीबीसी को बताया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वे जिला अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। लेकिन अलवर में प्रतिपुरा के इंद्रबल मीणा कहते हैं,
दोबारा लोगों में इस बात का भय, अगर इस तरह का तूफान आया तो जो प्रशासन है, सरकार है, उसके आपदा प्रबंधन को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि लोग उनके सहयोग करने के लिए तत्पर हैं कि इस तरह की आपदा दोबारा नहीं आए। ईश्वर से भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के भरोसे तो लोग बैठे हुए नहीं है, प्रशासन से तो लोगों को उम्मीद ही नहीं है, इसलिए लोगों में भय तो है ही। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट या तूफान चलता है तो लोगों के मन में भय पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होगी, दोबारा इस तरह की हालात होंगे तो लोग पहले से ही जो अपने पानी के लिए टैंक भरवा कर रख रहे हैं, कई लोग बहुत सारी अपनी अपनी व्यवस्थाएं अपने स्तर के लोग कर रहे हैं घरों में।
सरकार ने लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। यूपी से लगते धौलपुर जिले में धारापुरा के सरपंच सुगढ़ सिंह कहते हैं, प्रकृति का प्रकोप देख चुके लोग बहुत डरे हुए हैं।
बहुत जोर से डर रहे हैं, महसूस यही कर रहे हैं, पता नहीं कैसा तूफान आएगा, क्या होगा। पिछले ड्रेन उसे ज्यादा तेजी में आ रहा है, उसकी इतनी और डर रहे हैं, अब बचाव के साथ पता नहीं क्या उपाय होंगे, ये महसूस करते हैं पता नहीं क्या होगा, कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ तो कुछ नहीं किया है, औरतें बच्चे हैं तो सभी डरते हैं।
राजस्थान के लिए कुदरत की बेरुखी कोई नई बात नहीं है। इस धरती ने कभी सूखा देखा है तो कभी रेत के मचलते बाउंडर देखे हैं, लेकिन इस बार शायद कुदरत की बेरुखी रूप बदल कर आई थी। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने संबंधी कानून को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले तुरंत खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को यह कहते हुए रद्द किया है कि यह समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। पूरी जानकारी के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र।
पिछले काफी समय से ये मामला चर्चा में था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजधानी लखनऊ के अति महत्वपूर्ण इलाके में बड़े बंगले क्यों दिए जाएं। पूर्व IAS अधिकारी SN शुक्ल ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद व्यक्ति आम आदमी के बराबर हो जाता है। इस बारे में याचिका दायर करने वाले SN शुक्ल कहते हैं,
अन्य संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं बड़े, जैसे गवर्नर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं, उनको भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है। स्पीकर हैं, इस तरह के जो पदाधिकारी संवैधानिक हैं उनको भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है। तो कोई औचित्य नहीं है कि ये सुविधा केवल राज्य के मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध हो।
अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर ही ये याचिका स्वीकार की गई है।
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले हाई कोर्ट ने भी इस बारे में फैसला सुनाया था, लेकिन तब अखिलेश यादव की सरकार ने कानून में ही संशोधन कर दिया था। SN शुक्ल ने इसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, क्योंकि ये संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि राजनीतिक दलों ने अभी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव कहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रिव्यू में जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के करीब आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, मायावती, कल्याण सिंह, नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या कोई राजनीतिक असर भी होगा? लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन कहती हैं,
राजनीतिक प्रभाव इसलिए नहीं होंगे कि जितने फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास इस समय बंगलोज हैं। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री भी पुराने रखते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी रखते हैं और स्टेट्स में भी रखते हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और इसको स्टेट गवर्नमेंट मेरा जहाँ तक ख्याल स्टडी करेगी, क्योंकि हर पार्टी इसमें BJP के भी नेता है, कांग्रेस के भी है, समाजवादी पार्टी के भी है, BSP भी है, तो सभी के ऊपर ऐसा रहेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट विल लुक टू इट।
यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगले को लेकर आपत्ति पहले भी होती रही है और साल 1997 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। इसके बाद VP सिंह, कमलापत त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और श्रीपति मिश्र ने सरकारी बंगले खाली कर दिए थे, लेकिन जब मायावती की गठबंधन सरकार आई तो उन्होंने इस बारे में नया कानून बना दिया। लेकिन इस बार फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहकर खारिज किया है। अब देखना यह है कि इस फैसले को लेकर यूपी सरकार क्या करती है और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल में शादी के मौसम में प्रशासन ने घोड़ियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते जहां एक तरफ शादी करने वालों की दिक्कत हो गई है, वहीं घोड़ी के मालिकों को भी शादी के मौसम में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासन ने यह कदम घोड़ों में ग्लैंडर्स नामक बीमारी के पाए जाने के बाद लगाया है। भोपाल से शूर्य नियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल के काजी कैंप इलाके के रहमान बख्श के घोड़े में ग्लैंडर्स बीमारी पाई गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने घोड़े और घोड़ियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घोड़े के खून का सैंपल हिसार के ICAR राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में भेजा गया था, जहां वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद यह कदम उठाया गया है। ग्लैंडर्स को एक खतरनाक बीमारी बताया जाता है। यदि यह किसी घोड़े में हो जाए तो आमतौर पर घोड़े को मार ही दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के लोग बताते हैं कि मार देने से यह होता है कि बीमारी ज्यादा फैल नहीं पाती। यह एक संक्रामक रोग है और तेजी से फैलता है। नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव ने बताया,
नगर निगम के दायित्व है एक्चुअली, वो उसके आधार से कलेक्टर साहब ने पत्र लिखा था, एक उसमें ग्लैंडर्स बीमारी और उसमें डिटेक्ट हुई है, रटने डिपार्टमेंट की ओर से उनको सूचित किया गया था। तो वो लेटर जैसे ही आया नगर निगम आयुक्त के माध्यम से हमने आदेश निकलवा दिया है कि नगर निगम सीमा के बाहर जो प्रोटोकॉल में है उसके अकॉर्डिंग जो अक्ष प्रजाति है घोड़े घोड़ी गधे इन सब परिवहन ट्रांसपोर्टेशन और बाकी तरह के उनको नुमाइश वगैरह से प्रतिबंध रहेगा।
इटारसी का तिवारी परिवार भोपाल में बेटे शुभम तिवारी की शादी के लिए आया हुआ है, लेकिन इस आदेश के चलते उनके पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता। अब कार के जरिए ही शुभम की बारात निकलेगी। शुभम के चाचा अनुराग इस आदेश को लेकर काफी खफा नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया,
प्रशासन की ओर से कहा गया कि दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठेगा, तो आप बताइए कि हमने जिंदगी भर हमारे जो भतीजे की शादी का इंतजार किया उसको जो सारी परंपराएं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो क्यों करें साहब, इसमें प्रशासन क्यों आड़े आ रहा है। हिंदू समाज में वर्षों से उठता आ रहा है कि दूल्हा घोड़े पर बैठता है, उसका जुलूस निकलता है, उत्साहपूर्वक पूरे परिवार के लोग उस जुलूस में शामिल होते हैं। मेरा ये कहना है कि दूल्हे को घोड़े पर बैठने पर प्रतिबंध भोपाल में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।
वहीं इस आदेश ने घोड़े मालिकों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। यह सीजन शादी का है और अगर वो घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आमदनी से मार खा जाएंगे। शहर में नफीस भाई घोड़ियां उपलब्ध कराने वाले हैं। उन्होंने बताया,
हाँ सर, दुकान को घोड़े तो खत्म तो करना पड़ेगा, बीमारी चलेगी सर, जी हाँ सीजन चलेगा सर, अब अपना क्या करें, तो सर दुकान में दूल्हा नहीं बैठेंगे बारातों में घोड़े नहीं लग पाएंगे, सर अपन क्या करेंगे,
सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू चौहान इस बात पर सवाल करते हैं कि आखिर नगर निगम ने यह आदेश कैसे निकाल दिया। वह यह भी जानना चाहते हैं कि नगर निगम अपने इस आदेश पर अमल कैसे करेगा।
हिंदू धर्म में जब तक दूल्हा जो घोड़े पर बैठ कर नहीं जाएगा तब तक वो शादी की रस्म पूरी नहीं मानी जाती, तो ऐसे आदेश निकालना चाहिए जो वाकई व्यवहारिक हो। ये व्यवहारिक आदेश नहीं, तुगलकी आदेश है, और मैं समझता हूँ जो गंभीर बीमारी जो जिसका जिक्र हो रहा है ग्रैंडर बीमारी जो घोड़ों को हुई है उसका इलाज जो है नगर निगम को या जिला प्रशासन को या देखना चाहिए, और ऐसे घोड़ों को भोपाल सीमा नगर से सीमा बाहर करना चाहिए। ये थोड़ी कि आप उनको दूल्हों को ये बोल दो कि आप घोड़े पे नहीं बैठेंगे।
मई माह में शादी के 5 मुहूर्त हैं जबकि जून में 10 दिन मुहूर्त है। इस दौरान होने वाली शादियों में घोड़ियों का उपयोग नहीं हो पाएगा। प्रशासन का यह भी मानना है कि इसका असर मनुष्यों पर भी हो सकता है, इसलिए इसे रोकने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे के पास बहुत सारे ईमेल हैं और मेरे पास सूर्यांशी
बहुत सारे चिट्ठियां
हैं, हाँ खत हैं। तो हम ऐसा करते हैं आज कि आप ईमेल लीजिए और हाँ, मैं खत लेता हूँ।
बिल्कुल, और बारी बारी से हम अपनी अपनी पारियां खेलेंगे।
जी, तो आप शुरुआत कीजिए।
हाँ, सबसे पहले ईमेल की अगर बात करें तो सबसे पहला ईमेल आया है कुलदीप मोहन त्रिवेदी का, जो उन्नाव यूपी से लिखते हैं और ये वात्सल्य राय द्वारा प्रस्तुत किए गए इंडिया बोल कार्यक्रम की बेहद सराहना कर रहे हैं
जो इसी शनिवार को प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने कहा कि वात्सल्य राय की निष्पक्ष प्रस्तुति अच्छी लगी और ये चिंतनीय बात है कि देश में रहने वाले कुछ लोग भारत देश के प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति को आत्मसात न करके कट्टरपंथी विचारधारा के रास्ते और संस्कृति को आदर्श मानते हैं।
जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस बार इंडिया बोल कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ उसकी तारीफ मुझे लगता है आगे की चिट्ठियों में और भी होगी।
हाँ।
लेकिन इस बीच मैं एक पोस्टकार्ड लेता हूँ। श्रीकांत कालूस्कर ने मुरैना मध्य प्रदेश से ये पोस्टकार्ड लिखा है और इन्होंने शुरुआत की है शोले के डायलॉग से, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं के अनुसार।
अब इसको आपको बोलना भी वैसे ही ढंग से
मतलब
पड़ेगा।
वो कर नहीं सकते क्योंकि उस तरह के हम आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ये कहते ये हैं कि नमस्कार, मैं रत्नाकर भारती के समय से BBC सुनता आ रहा हूँ। यानी रत्नाकर भारती बहुत पुराने जमाने में BBC के प्रस्तोता हुआ करते थे, तब से ये सुन रहे हैं और अब ये लिखते हैं कि विवेचना में गणित की कहानी बहुत अच्छी लगी, ऑडियो व्यवधान की शिकायत रहती है। तो विवेचना भी राजेश प्रियदर्शी ने गणित की कहानी पे की थी जिसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने तारीफ की है, ईमेल भी भेजी हैं। सबको पढ़ना संभव नहीं है लेकिन अगर आगे आपके तरफ कोई ईमेल आए तो पढ़ दीजिएगा।
बिल्कुल, फिलहाल तो यहाँ पर राजेश जी जो मेल आया है वो वात्सल्य राय जी के ही बारे में आया है। सादिक आजमी सऊदी अरब से लिखते हैं और उन्होंने कहा है कि BBC ने श्रोताओं के मध्य जागरूकता लाने का जो प्रयास किया है उस सोच को हृदय से तल से सलाम पेश करते हैं वो, और ये जो अभी वर्तमान में गर्मा गर्म विषय चल रहा है ये एक राजनीतिक फंडा है, वरना चार साल सत्ता में रह के अनेकों साल विपक्ष में रहकर ये खामोश क्यों रहे।
ये खामोश क्यों रहे, बिल्कुल ये इनकी आलोचना है और हमने प्रसारित कर दी है। लेकिन एक सवाल सूर्यांशी मेरे जहन में आपके लिए आ रहा है। प्रोग्राम कहिए तो।
प्रोग्राम
बहुत अच्छा कह रही हैं आप। लेकिन हमारे एक श्रोता हैं ऋषिकेश गुप्ता, वो लिखते हैं गांव मलिकापुर पोस्ट मुर्तजीपुर, पढ़ने में नहीं आ रहा है, गाजीपुर वाराणसी से लिखते हैं और इसमें आपकी आलोचना की गई है। इन्होंने लिखा है, सूर्यांशी पांडे जी आपसे विशेष आग्रह है कि यदि आप प्रोग्रामों शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रही हैं तो कार्यक्रम भी बोल सकती हैं, क्योंकि आप हमेशा प्रोग्रामों को पोगामो उच्चारित करती हैं जब आप, इसीलिए मैंने आपसे उच्चारण करवाया, आपने तो सही सही उच्चारण कर दिया।
मुझे लगता है कि ये किसी और को सूर्यांशी तो नहीं समझ बैठे हैं।
लेकिन इतनी बारीकी से कुछ, हमारे श्रोता सुनते हैं और अगर उनको लगा है तो शायद कभी जबान तो फिसल ही जाती है हम लोगों की।
बिल्कुल, और मैं माफी चाहूंगी अगर मेरे से ये खता हुई है और मैं राजेश जी के सामने तीन बारी प्रोग्राम 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 बोलकर इसकी माफी मांगना चाहूंगी।
नहीं, आपने बहुत सही उच्चारण किया प्रोग्राम। बहरहाल ईमेल आप ले।
अब अगला मेल जो है वो है आकाश राज का, पटना बिहार से लिखते हैं और इन्होंने रेहान फजल ने जो विवेचना की थी गोल्डा मेयर पर, इसकी जो है बहुत ही सराहना की है और उन्होंने कहा है कि उनका गजब का व्यक्तित्व है और जीवन शैली पर जिस तरह से दृष्टि डाली गई वो बेहद रचनात्मक रूप था और बहुत ही पसंद आई उन्हें।
हाँ, ये बात जाहिर है कि गोल्डा मेयर जैसी शख्सियत पे कितनी बार हम सुनते हैं, कितनी बार उनके बारे में रेडियो में या टेलीविजन में कार्यक्रम आते हैं, तो ये तो रेहान फजल की खूबी है कि वो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को सामने लाते हैं जिनके बारे में हमें नई जानकारियां मिलती हैं। तो ये एक चिट्ठी मेरे पास है, अंतर्देशीय लिफाफा है, जो लक्ष्मण दास शर्मा मंडलाना नारनौल से लिखते हैं, हमारे पुराने श्रोता हैं। लिखते हैं कि 27 अप्रैल को शुक्रवार को रेहान फजल ने विवेचना प्रस्तुत की हेमवती नंदन बहुगुणा पर, जो बहुत ज्ञानवर्धक थी और उनके हर जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला गया। वे नेहरू जी की पसंद थे, संगठनात्मक शक्ति बहुत ज्यादा थी, वे नेहरू जी की वेशभूषा चाल ढाल अपनाते थे और चूड़ीदार पाजामा शेरवानी तथा टोपी नेहरू जी की तरह ही पहनते थे। तो लक्ष्मणदास शर्मा जी हमारे पुराने श्रोता हैं, बुजुर्ग हैं, तो हेमवती नंदन बहुगुणा को तो उन्होंने देखा ही होगा, इसीलिए चिट्ठी लिखी है।
बिल्कुल।
आपके पास और कोई ईमेल होंगे?
हाँ, तो ये मेल जो है ये सऊदी अरब से लिखते हैं मुर्शेद एच चौधरी,
किंग खालिद यूनिवर्सिटी से।
हाँ, और ये लिखते हैं कि मैं बीबीसी के प्रगतिशील और तटस्थ विचारों को सलाम करता हूँ, लेकिन आज जबकि दुनिया में महिला के प्रति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, बीबीसी हिंदी की टीम में उनका प्रतिनिधित्व कम दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, इनकी जो आलोचना है ये ठीक बात है और ये कहते हैं कि पूरा प्रोग्राम कोई महिला कभी कम ही प्रस्तुत करती है। ये बात सच है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करती हैं। हमारी कोशिश ये है, एक हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बीबीसी हिंदी रेडियो में जितने लोग हिस्सेदारी करते हैं, हमारी कोशिश होगी कि 50% उनमें महिलाएं हों और 50% पुरुष हों। अभी ये बहुत ही आंकड़ा उल्टा पुल्टा है, यानी ज्यादा मर्द आते हैं, महिलाएं बहुत कम आती हैं। इसीलिए बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सूर्यांशी जी क्या भाई है और चिट्ठियां पढ़िए, कम से कम शुरुआत तो हो। तो इसकी हमको अंदाजा है इसके महत्व का, हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन, उनकी हिस्सेदारी हमारे कार्यक्रमों में बढ़े। अगली चिट्ठी पढ़ने की इजाजत नहीं है क्योंकि समय हो चुका है। चलते चलते पता बताते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित कर दिया है। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा है कि अगर सीरिया ने अपनी जमीन से ईरानी सुरक्षा बलों को इसराइल को धमकी देने की इजाज़त दी तो उनका देश बशर अल असद को ख़त्म कर सकता है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जियांवेस ली ड्रायन ने कहा है कि अमरीका कुछ भी करे लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के साथ बने रहेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA प्रमुख के लिए अपनी उम्मीदवार जीना हासपिल का बचाव किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की पुलिस ने एक रक्तदान शिविर पर आत्मघाती बम हमला करने की तैयारी कर रहे शख्स को मारने का दावा किया है। तुर्की और अमरीका के रिश्तों में तलखी पैदा करने वाले आतंकवाद से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।